नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली सहित ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में तेज हवाएं चल रही हैं, इस कारण इन जगहों पर ठंड बढ़ गई है। हालांकि इन दिनों धूप भी निकलने की संभावना है, इसके अलावा हल्की बारिश भी होगी। बर्फीली हवाओं के कारण सर्दी बढ़ गई है, इसके साथ ही दिल्ली NCR को प्रदूषण से राहत मिल गई है। लगभग 3 महीने बाद लोग दिल्ली की साफ हवा में सांस ले रहे हैं। असल में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, इस कारण उत्तर भारत में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में अभी सर्दी पड़ेगी। IMD के अनुसार अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत और मध्य के कई शहरों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है। मौसम विज्ञान का ये भी कहना है कि थोड़ी देर की बारिश के बाद दिल्ली सहित हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर लौट आई है। पाकिस्तान में आज संसदीय चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया पर 100 विदेशी पर्यवेक्षक नजर रख रहे हैं। 90,600 से अधिक पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग होगी। 12.8 करोड़ से अधिक मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। इस बार मुख्य मुकाबला नवाज शरीफ की PMLN बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच होगा। इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद से ही पाकिस्तान आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि इमरान के जेल में होने से नवाज शरीफ की पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के मुताबिक 100 से ज्यादा विदेशी पर्यवेक्षक व विदेशी पत्रकार चुनाव कवर करने आए हैं। बलूचिस्तान के इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बार चुनाव में 12.85 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नेशनल असेंबली सीटों के लिए 5,121 उम्मीदवारों में से कुल 12,85,85,760 पंजीकृत मतदाता वोट देने के पात्र हैं। चुनाव के लिए 6.50 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान के अस्पतालों को किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 7 से 9 फरवरी तक हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को बंगाल से 40 पार ना करने की चुनौती आई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। वहीं केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक UPA सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल पर ब्लैक पेपर लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ब्लैक पेपर को पेश कर सकते हैं। वहीं संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक किया जा रहा है। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक श्वेत पत्र पेश करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार UPA सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाने वाली है, इसलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। समान कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही BJP ने UCC को अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया था और अब विधानसभा से इसे पारित भी करवा दिया गया है। आधिकारिक तौर पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये लागू भी हो जाएगा। CM पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि की विधानसभा में ये विशेष विधेयक, जिसकी देश में लंबे समय से मांग उठती रही, उसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा में इसे पारित किया गया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड के विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।